നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ.
ഏക കോശി ഗയ ഹോംഗെ കി ദ്രൗപദി കോ ഇസ് ബവണ്ടർ കേ ഉത്പാദ സേ ബഡി ശിഥിലത കാ അനുഭവ ഹോനെ ലഗാ. ഥക് ഗയി, സുകുമാരി ഥി, പൈദൽ ചലനെ കാ അഭ്യാസ നഹി ഥാ, പൃഥ്വി പർ ബൈഠ ഗയി. തബ് ധർമ്മരാജ് യുധിഷ്ഠിര നെ गोद में लिटाकर भीमसेन से कहा, भैया भीम, अब तो बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत आएंगे, बर्फ के कारण उनको पार करना बड़ा कठिन होगा, उन पर द्रौपदी कैसे चलेगी, इसलिए क्या करना चाहिए. भीमसेन ने कहा, राजन ये क्या विचार किया, मैं स्वयं ही आपको, द्रौपदी को, नकुल सहदेव को अपने कंधों पर चढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाऊंगा, कोई चिंता मत करो. इसके सिवा हिडंबा का पुत्र घटोत्कच भी बल में मेरे ही समान है, वह आकाश में चल सकता है, आपकी आज्ञा होने पर वह हम सबको ही ले चलेगा. धर्मराज ने कहा, तो भीमसेन घटोत्कच हमारे पास है कहां, अभी बुला लो तो बुला लाओ. भीमसेन ने उसी समय घटोत्कच का स्मरण किया और स्मरण करते ही घटोत्कच आ गया, हाथ जोड़ा, पांडवों को प्रणाम किया, ब्राह्मणों को प्रणाम किया. इसके पश्चात भयंकर वीर घटोत्कच ने हाथ जोड़कर भीमसेन से कहा, मैं आपके स्मरण करते ही आपकी सेवा में उपस्थित हो गया हूं, कहिए क्या आज्ञा है. तब भीमसेन ने बड़े प्यार से उसे गले लगाकर कहा, बेटा तेरी माता द्रौपदी बहुत थक गई है, तू इसे अपने कंधे पर चढ़ा ले, इस प्रकार धीमी चाल से चलना जिससे तुम्हारी मां को कष्ट न हो, क्योंकि तीर्थों में इसी प्रकार पुत्र अपने माता पिता की शरीर की पूरी रक्षा करते हैं, इस कारण से उनको बड़ा पुण्य का लाभ होता है. घटोत्कच ने कहा, पिताजी क्यों चिंता करो, मैं अकेला ही धर्मराज को, धौम्य ऋषि को, द्रौपदी को और नकुल सहदेव सबको ले सकता हूं, इस पर भी मेरे साथ तो और भी सैकड़ों सैकड़ों इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले शूरवीर हैं, वे ब्राह्मणों को अपने अपने कंधे पर ले लेंगे, इस विषय में आप क्यों चिंता करो. ऐसा कहकर वीर घटोत्कच तो द्रौपदी को लेकर पांडवों के बीच में चलने लगा. दूसरे घटोत्कच के साथ राक्षस आए, वो पांडवों को लेकर चलने लगे. अतुलित तेजस्वी भगवान लोमस तो अपने तपोबल से स्वयं ही आकाश मार्ग में चलने लगे. उस समय वे दूसरे सूर्य के समान जान पड़ते थे. घटोत्कच की आज्ञा से ब्राह्मणों को भी दूसरे राक्षसों ने अपने कंधे पर बड़े सम्मान के साथ बैठाया. इस प्रकार वे सुरम्य वन उपवनों को देखते देखते बद्रिक आश्रम की ओर चल पड़े. बद्रिक वन में आए थे, वह आश्रम की ओर चल पड़े. राक्षस तो बहुत तेज चलने वाले थे, इसलिए थोड़ी देर में वे बहुत दूर चले गए. मार्ग में जाते हुए उन्होंने मिलेच्छों से बसे हुए उस देश को तथा वहां की रत्नों की खानों को, तरह तरह की रत्नों से संपन्न पर्वतों की तलहटियों को देखा. उस देश में अनेकों विद्याधर, किन्नर, गंधर्व, किमपुरुष विचरते थे तथा जहां तहां बहुत से बानर, मयूर, चमरी गाय, रूरू, मृग, शूकर, गवय, भैंसे, लंगूर खूब घूम रहे थे. नदियां भी दिखाई दे रही थी. इस प्रकार उत्तर कुरु देश को लांघकर उन्होंने अनेकों आश्चर्यों से युक्त कैलाश पर्वत देखा. उसके पास ही श्री नर नारायण के आश्रम के दर्शन किए. बड़ा पवित्र आश्रम, वहां के वृक्ष फल फूलों से लदे हुए. यहां उन्होंने उस गोल टहने वाली मनोहर बद्री के दर्शन किए. बद्री माने बैर, उसकी छाया में जाकर बैठे. पत्ते बड़े चिकने और कोमल, और वो बद्री फल बड़े मीठे लगे। उस बद्री के पास पहुंचकर सब महानुभाव और ब्राह्मण लोग राक्षसों के कंधों से उतरे और जिसमें स्वयं नर नारायण विराजमान है ऐसे उस आश्रम की शोभा निहारने लगे। इस आश्रम की विशेषता ये थी कि अंधकार नहीं था, किंतु वृक्षों की सघनता के कारण इसमें सूर्य की किरणों का प्रवेश भी नहीं था, यही आश्चर्य है। इसी प्रकार यहां भूख प्यास नहीं लगती, सर्दी गर्मी का अनुभव नहीं होता और इसमें प्रवेश करते ही मनुष्य शोक रहित होकर बड़े आनंद के अंदर झूमने लग जाता है। यहां ऋषि मुनियों की भीड़ लगी थी तथा ऋक्साम यजुरूपा ब्राह्मी लक्ष्मी विराजमान थी। जो लोग धर्म बहिष्कृत थे उनको तो इसमें प्रवेश नहीं हो सकता था। जिनका तेज सूर्य और अग्नि के समान था और अंतःकरण का मल तब से दग्ध हो चुका था वे ही संयतेन्द्रिय मुमुक्षु यतिजन यहां रहते थे। जितेन्द्रिय पवित्र आत्मा युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित उन ऋषियों के पास गए, सबको प्रणाम किया। उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को अपने आश्रम में देखा, प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद दिया। उन महर्षियों का तेज अग्नि के समान था, निरंतर स्वाध्याय में लगे रहते थे। युधिष्ठिर महाराज का सत्कार किया, जल पुष्प फल मूल आदि अर्पित किए। बड़े विनय से युधिष्ठिर ने स्वीकार किया। फिर भीमसेन आदि भाइयों ने द्रौपदी और वेद वेदांग में पारंगत सहस्रों ब्राह्मणों के सहित उस मनोरम पवित्र आश्रम में प्रवेश किया। साक्षात इंद्र और स्वर्ग के समान वो आश्रम, सब दर्शनों का लाभ उन्होंने लिया। वहां वे सीता नाम से विख्यात है गंगा नदी। सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा चार नाम है, यहां सीता नाम से है गंगा जी। स्नान किया, बड़े आनंद से रहने लगे। अब कथा को बहुत ध्यान से सुनना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इधर अर्जुन से मिलने की इच्छा से पांडव लोग उस स्थान पर 6 रात रहे। इतने में ही देवयोग से ईशान कोण की ओर से बहते हुए वायु से 1000 दल कमल यूं उमड़ करके आए। 1000 दल वाला एक कमल ऐसे उड़ता हुआ आया। वो एक कमल सूर्य के समान प्रकाशमान, उस कमल की गंध बहुत दूर तक फैले। वो कमल आकाश से यूं आ रहा था, पृथ्वी पर वो गिरे इससे पहले द्रौपदी की दृष्टि पड़ी। उसे देखते ही उस सौगंधिक नाम के कमल के पास आई और मन में अत्यंत प्रसन्न होकर भीमसेन से कहने लगी, आर्य मैं वह कमल धर्मराज को भेंट करूंगी। यदि आपका मेरे प्रति वास्तव में प्रेम है तो मेरे लिए ऐसे बहुत से पुष्प लेकर आइए, मैं इन्हें काम्यक वन में अपने आश्रम पर ले जाना चाहती हूं। भीमसेन से ऐसा कहने के बाद द्रौपदी उसी समय उस फूल को लेकर धर्मराज के पास आई। राज महिषी द्रौपदी का आशय समझ भीमसेन अपनी प्रिया का प्रिय करने की इच्छा से जिस ओर से वायु उड़ाकर लाया था उसी ओर दूसरे फूल लेने के विचार से बड़े तेजी से चला। मार्ग में जो भी बाधाएं आई हटाते गए और अपना सुवर्ण की पीठ वाला धनुष और विषधर सर्प के समान पैने बाण लिए और वे कुपित हुए सिंह और हाथी के समान चलने लगे। मार्ग में चलते समय वे आपस में टकराते हुए बादलों के समान भीषण गर्जना कर रहे थे। उस शब्द से चौकन्ने होकर बाघ गुफाओं को छोड़कर भागने लगे। भीमसेन की गर्जना से जंगली जीव जहां तहां छिप गए, पक्षी भयभीत होकर उड़ गए, मृगों के झुंड घबराकर चौकड़ी भरने लगे। भीमसेन की गर्जना से सारी दिशाएं गूंज उठी और वे बराबर आगे बढ़ते गए। थोड़ी दूर जाने पर गंधमादन की चोटी पर एक कई योजन लंबा चौड़ा केले का बगीचा दिखाई दिया। महाबली भीमसेन नृसिंह के समान गर्जना करते हुए झपट कर उस केले के वन में बगीचे में घुस गए। उस वन में महावीर हनुमान जी रहते थे। उन्हें अपने भाई भीमसेन के उधर आने का पता लग गया। उन्होंने सोचा कि भीमसेन का इधर से होकर स्वर्ग में जाना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से संभव है मार्ग में उनका कोई तिरस्कार कर देगा या श्राप दे देगा। ऐसा सोचकर हनुमान जी ने केले के बगीचे में से एक जो संकड़ा मार्ग जाता था उस संकड़े मार्ग में जाकर वे लेट गए और उस मार्ग को रोक दिया। वहां पड़े पड़े जब औंग आने पर भी जंबाई लेकर अपनी पूंछ फटकारते थे तो उसकी ध्वनि सब जगह फैलती थी। इससे वो पर्वत भी डगमग हो जाता था, शिखर भी टूट टूट कर लुढ़क जाते थे। वह शब्द मतवाले हाथी की गर्जना को भी दबाकर पर्वत पर सब और फैल रहा था। ऐसा कभी न सुना हुआ शब्द सुनकर भीमसेन के रोएं खड़े हो गए। वह आश्चर्य करने लगा, ऐसा शब्द कौन कर सकता है, ऐसा शब्द मेरे से भी नहीं निकलता है, इस शब्द का कारण क्या है। ढूंढने के लिए केले के बगीचे में सब और घूमने लगे। ढूंढते ढूंढते उन्हें उस बगीचे में एक मोटी शिला पर लेटे हुए वानर राज हनुमान दिखाई दिए। उनके होठ पतले थे, जीभ और मुंह लाल थे, कानों का रंग भी लाल था, भौहें चंचल थी तथा खुले हुए मुख में सफेद नुकीले और तीखे दांत और दाढ़ें दिखाई देती थी। उनके कारण उनका वदन किरणयुक्त चंद्रमा के समान जान पड़ता था। बड़े तेजस्वी और सुनहरे कदली वृक्षों के बीच में लेटे हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो केसरों के बीच में अशोक का फूल रखा हुआ हो। उनके अंग की कांति प्रज्वलित अग्नि के समान थी और अपनी मधु के समान पीली आंखों से इधर उधर देख रहे थे। उनका शरीर बड़ा स्थूल था और वे स्वर्ग के मार्ग को रोककर हिमालय के समान स्थित थे। उस महान वन में हनुमान को अकेले लेटे देखकर महाबली भीमसेन बड़ी निर्भयता के साथ उनके पास गए और बिजली के समान कड़क शब्द करते हुए सिंहनाद करते हुए बोलने लगे। भीमसेन की इस गर्जना से वन के जीव जंतु पक्षी सबको बड़ा त्रास हुआ। महाबली हनुमान जी ने भी अपने नेत्रों को कुछ खोलकर भीमसेन की ओर देखा और उपेक्षा पूर्वक देखने के बाद वापिस अपनी आंख बंद कर ली। भीमसेन को बहुत बुरा लगा, इतना निर्भय कौन है। भीमसेन ने फिर गर्जना की, कौन हो, मेरे मार्ग के सामने इस प्रकार मेरी उपेक्षा करने का कैसे साहस कर रहे हो। मुस्कुराते हुए हनुमान जी बोले, भैया मैं तो रोगी हूं, यहां आनंद से सो रहा था, तुमने मुझे जगा दिया। तुम समझदार हो, तुम्हें जीवों पर दया करनी चाहिए। तुम्हारी प्रवृत्ति ऐसे धर्म का नाश करने वाली ऐसे धर्म का नाश करने वाले तथा मन वाणी और शरीर को दूषित करने वाले क्रूर कर्मों में क्यों होती है। तुम तो समझदार हो, क्यों हमको डराते हो, धमकाते हो। मालूम होता है तुमने कभी विद्वानों की सेवा नहीं की है, तभी तो धमकाते हो। बताओ तुम हो कौन, इस वन में किस लिए आए हो? यहां तो न कोई मानव रहता है, न कोई मानवीय भाव रह सकता है, तुमको आगे कहां जाना है? यहां से आगे तो वह यह पर्वत अगम्य है, इस पर कोई चढ़ नहीं सकता है। अतः तुम ये अमृत के समान मीठे मीठे कंदमूल फल या ये केले खाकर विश्राम करो, और यदि मेरी बात हितकर समझो तो यहां से लौट जाओ। आगे जाने में व्यर्थ अपने प्राणों को संकट में क्यों डालते हो? यह सुनकर भीमसेन ने कहा, बानर राज कौन है आप, और इस बानर देह को आपने क्यों धारण कर रखा है? आपको मालूम है मैं कौन हूं? मैं तो चंद्रवंश के अंतर्गत कुरुवंश में उत्पन्न हुआ हूं। मेरी माता का नाम कुंती है, मैं महाराज पांडु का पुत्र हूं, लोग मुझे वायुपुत्र भी कहते हैं, मेरा नाम भीमसेन है। कभी ये नाम आपके कानों में आया? हनुमान जी बोले, मैं तो बंदर हूं, तुम जो इस मार्ग से जाना चाहते हो तो सो मैं तुम्हें इधर होकर नहीं जाने दूंगा। अच्छा यही है, तुम यहां से लौट जाओ, नहीं तो फिर मारे जाओगे। भीमसेन ने कहा, मैं मरूं या बचूं, इस विषय में क्या मैं तुमसे सलाह ले रहा हूं? तुम जरा उठकर मुझे रास्ता दो, नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगा। हनुमान जी बोले, हे मैं तो रोग से पीड़ित हूं, यदि तुम्हें जाना हो तो मुझे लांग कर चले जाओ। भीमसेन बोले, ज्ञान से जानने में आने वाले निर्गुण परमात्मा समस्त प्राणियों के देह में रहते हैं, इसलिए किसी भी प्राणी का अपमान करना परमात्मा का अपमान है, मैं तुम्हारा लंघन नहीं कर सकता। यदि शास्त्रों के द्वारा मुझे भूत भावन श्री भगवान के स्वरूप का ज्ञान न होता तो मैं तुमको तो क्या इस पर्वत को भी लांग कर जा सकता था। तुमको मालूम है पर्वतों को लांग करके जाने वाले, समुद्र को भी लांगने वाले एक हनुमान जी हुए। वे हनुमान जी कितना आकाश में लांग करके गए थे, मैं भी वैसे ही लांग सकता, लेकिन तुम में परमात्मा है, मैं तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहता। हनुमान जी अंदर से बहुत खुश हो गए। ऊपर से कहते हैं, तो हनुमान कौन था, उसने समुद्र को लांग लिया? समुद्र तो साक्षात देवता होता है, उसको कैसे लांगा? हनुमान के विषय में कुछ तुम जानते हो? जानते हो तो कहो। भीमसेन बोले, अरे क्या बात करते हो बानर श्रेष्ठ, वो हनुमान मेरे बड़े भाई हैं, वे बुद्धि बल और उत्साह से संपन्न और बड़े गुणवान हैं, रामायण में उनका बड़ा वर्णन मिलता है। वे रामचंद्र जी की भार्या सीता जी की खोज करने के लिए एक छलांग में 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांग कर गए। मैं उन्हीं का छोटा भाई हूं भीमसेन, वो भी वायुपुत्र थे, मैं भी वायुपुत्र हूं, इसलिए खड़े हो जाओ, मुझे रास्ता दो, यदि मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो मैं अभी तुमको यमपुरी में भेज देता हूं। हनुमान जी ने कहा, अरे निष्पाप भीमसेन, तुम कुंती के पुत्र होकर इतना रोष करते हो, हम जैसे बुढ़े आदमियों पर जरा कृपा करना चाहिए। हनुमान, हम बुढ़े हो गए, अब हमें उठने की शक्ति नहीं है, कृपा करके मेरी पूंछ हटाकर फिर तुम चले जाओ। यह सुनकर भीमसेन तिरस्कार पूर्वक हंसा, इसकी पूंछ का स्पर्श करूं और मैं इसको उठाऊं? मैंने पर्वत के पर्वत उठाए, फिर भी उन्होंने हनुमान जी की पूंछ को उठाने का प्रयास किया परंतु उनकी पूंछ तो टस से मस नहीं हुई। फिर उन्होंने दोनों हाथों से उठाया किंतु वे असमर्थ रहे। भीमसेन ने पूरा जोर लगाया, पसीना पसीना हो गया, दांत भींचे, पूरा जोर लगाया, फिर कुछ भी नहीं हुआ। लज्जा के मारे भीमसेन के आंखों में आंसू आ गए और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किए और बड़ी नम्रता से कहा, हे वानरराज, आप मुझ पर यदि प्रसन्न हैं तो सर्वप्रथम मैंने जो आपको कटु वचन कहे हैं उनके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। हे वानरराज, मैं आपका परिचय पाना चाहता हूं, इसलिए कृपा करके बताइए इस प्रकार बानर का रूप धारण करने वाले आप कौन हैं? कोई सिद्ध है, कोई देवता है, गंधर्व है, गुह्यक है, कोई कुछ न कुछ तो है ही। यदि यह कोई गुप्त रखने के योग्य बात न हो और मेरे सुनने योग्य हो तो मैं आपका शरणागत हूं। मैं शिष्य भाव से पूछ रहा हूं, कुतर्क भाव से नहीं पूछ रहा हूं, आप बतलाने की कृपा करें। तब हनुमान जी बहुत मुस्कुराते हुए कहने लगे, कमल नयन भीम, इतने प्रेम से तुम मेरा परिचय पूछना चाहते हो तो तुम सावधानी से सुनो। मैं वानरराज केसरी के क्षेत्र में जगत के प्राण स्वरूप वायु से उत्पन्न हुआ हनुमान नाम का बानर हूं। भीमसेन की आंखें खुल गई। सुनो, अग्नि के जैसी वायु के साथ मित्रता होती है, उसी प्रकार मेरी मित्रता सुग्रीव के साथ थी। किसी कारण से बाली ने अपने भाई सुग्रीव को निकाल दिया, तब बहुत दिनों तक वे मेरे साथ ऋष्यमुख पर्वत पर रहे। उस समय दशरथ नंदन भगवान श्रीराम पृथ्वी तल पर विचर रहे थे। वे मानव रूपधारी साक्षात भगवान विष्णु ही थे। अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वे धनुर्धरों में श्रेष्ठ रघुनाथ जी अपनी भारिया और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य में आए थे। जिस समय वे जनस्थान में रहते थे, उन पुरुष श्रेष्ठ को माया से रत्न जटित स्वर्णमय मृक्का रूप धारण करने वाले मारीच राक्षस के द्वारा धोखे में डालकर राक्षस राज दुरात्मा रावण छल पूर्वक बलात् उनकी भार्या का हरण कर लंका ले गया। इस प्रकार स्त्री का अपहरण हो जाने से उसे भाई के साथ साथ खोजते खोजते भगवान श्रीराम ऋष्यमुख पर्वत पर वानरराज सुग्रीव से मिले। फिर इन दोनों की आपस में मित्रता हो गई और राम जी ने बाली को मारकर किष्किंधा के राज्य पर सुग्रीव का अभिषेक कर दिया। अपना राज्य पाकर सुग्रीव ने सीता की खोज के लिए हजारों वानर भेजे। उस समय 1 करोड़ बांदरों के साथ मैं भी दक्षिण की ओर गया। तब गीधराज संपाति ने बताया कि सीता जी तो रावण के यहां है, इसलिए पुण्यकर्मा भगवान श्री राम का कार्य पूरा करने के लिए मैंने सहसा 100 योजन विस्तार वाला समुद्र पार किया। उस मगर और ग्राहदी से भरे हुए समुद्र को अपने पराक्रम से पार कर मैं रावण की नगरी में चला गया और जनक नंदिनी श्री सीता से मिला। फिर अट्टालिका, प्राकार और गोपुर आदि से शोभित लंकापुरी को जलाकर वहां राम नाम की घोषणा करके लौट आया। मेरी बात मानकर कमल नयन भगवान श्री राम तुरंत ही करोड़ों बांदरों के साथ चले और समुद्र पर पुल बांधकर लंका में पहुंच गए। वहां उन्होंने संग्राम में समस्त राक्षसों को, संपूर्ण लोकों को रुलाने वाले रावण को, उसके बंधु बांधवों सहित मारा और अपने आश्रितों पर कृपा करने वाले परम धार्मिक भक्त विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। फिर नष्ट हुई वैदिक श्रुति के समान अपनी भार्या को ले आए और उसके साथ अपनी राजधानी अयोध्यापुरी में लौट आए। वहां जब उनका अभिषेक हुआ तो मैंने उनसे यह वर मांगा कि हे शत्रुदमन, जब तक इस भूमंडल पर आपकी पवित्र कथा रहे तब तक मैं जीवित रहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे आपसे भी ज्यादा आपकी कथा से प्रेम है। इस पर उन्होंने बड़े प्रसन्न होकर कहा, जाओ ऐसा ही होगा। भीमसेन, श्री सीता जी की कृपा से यहां रहते हुए ही मुझे इच्छा अनुसार अपने आप सब दिव्य भोग प्राप्त हो जाते हैं। श्री राम जी ने 11,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य किया, फिर वे अपने धाम को चले गए, लेकिन मैं यहीं रहना उचित समझा, इसलिए यहीं हूं। हे अनक, इस पृथ्वी पर गंधर्व और अप्सराएं उनके चरित्र सुना सुनाकर मुझे बहुत आनंदित करते हैं। मैं उनके मुख से रात दिन राम कथा सुनता रहता हूं। इस मार्ग में देवता लोग रहते हैं, मनुष्यों के लिए अगम्य है, इसीलिए मैंने तुमको रोका है। संभव है इसमें कोई तुम्हारा तिरस्कार कर देता, तुम्हें कोई शाप दे देता, क्योंकि यह बड़ा दिव्य मार्ग है, केवल देवताओं के लिए ही है, इसमें मनुष्य नहीं जाते हैं। तुम यहां जाने के लिए आए हो, वह सरोवर तो यही है जो आके फूल तुम लेना चाहते थे। हनुमान जी के ऐसा कहने पर भीमसेन बड़े गदगद हो गए, उनके आंखों से प्रेम के आंसू गिरने लगे। उन्होंने बड़ी नम्रता से अपने बड़े भाई बानरराज हनुमान जी को प्रणाम किया और अपनी कोमल भणी वाणी से कहा, हे वानरराज, आज मेरे समान इस संसार में कोई बड़भागी नहीं है, क्योंकि आज मुझे अपने चहेते ज्येष्ठ बंधु के दर्शन हुए हैं। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है, आपके दर्शनों से मुझे बड़ा सुख मिला है, किंतु मेरी एक इच्छा है, वह आपको अवश्य पूरी करनी होगी। हनुमान जी ने कहा, वो कौन सी इच्छा है? भीमसेन ने कहा, हे वीरवर, समुद्र को लांघते समय आपने जो अनुपम रूप धारण किया था, मेरी एक हार्दिक इच्छा है, आपको अवश्य पूरी करनी होगी। बोलो भीमसेन, क्या चाहते हो? हे वीरवर, समुद्र को लांघते समय आपने जो अनुपम रूप धारण किया था, मैं उसे देखना चाहता हूं। इससे मुझे बहुत संतोष होगा और आपके वचनों में मेरा विश्वास बढ़ता जाएगा। भीमसेन के ऐसा कहने पर परम तेजस्वी हनुमान जी ने हंसकर कहा, भैया, तुम उस रूप को देख नहीं सकोगे और न कोई अन्य पुरुष ही उसको देख सकता है। उस समय की बात ही दूसरी थी, अब वो समय भी नहीं है। सतयुग का समय था तथा त्रेता और द्वापर का दूसरा ही है। काल तो निरंतर क्षय करने वाला होता है ना, अब मेरा वह रूप है नहीं। पृथ्वी, नदी, वृक्ष, सिद्ध, देवता, महर्षि, ये सब काल का अनुसरण करते हैं। प्रत्येक युग के अनुसार उनका देह बल, उनका मनोबल और उनका प्रभाव न्यूनाधिकता से होता ही रहता है। इसलिए तुम उस रूप को देखने का आग्रह छोड़ दो। मुझमें तो युग युग के अनुसार बल विक्रम रहता है, क्योंकि काल का अतिक्रमण करना किसी के बस की बात नहीं है। भीमसेन ने कहा, आप मुझे युगों की संख्या और प्रत्येक युग के आचार धर्म अर्थ और काम के रहस्य कर्मफल का स्वरूप तथा उत्पत्ति और विनाश सुनाइए। हनुमान जी बोले, भैया सबसे पहला सतयुग होता है, उसमें सनातन धर्म की पूर्ण स्थिति रहती है तथा किसी का कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता है। उस समय किसी की भी धर्म की क्षति नहीं होती है और पिता के सामने पुत्र मरते नहीं हैं। फिर कालक्रम से उसमें गौणता आती है। कृतयुग में न कोई आदि व्याधि थी, न इंद्रियों में दुर्बलता थी, न कोई आदमी किसी की निंदा करता था, किसी को दुख से रोना नहीं पड़ता था, न किसी में घमंड या कपट था। आपस के झगड़े, आलस्य, द्वेष, चुगली, भय, संताप, ईर्ष्या और मत्सरता का तो उस युग में नाम ही नहीं था। उस समय के लोग बड़े योगी जीवन में रहते थे। स्वयं श्री नारायण का वर्ण शुक्ल था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्ण समदम आदि से लक्षणों से संपन्न थे। प्रजा अपने अपने कामों में लगी रहती थी। सबके आश्रय एक परमात्मा ही थे। आचार और ज्ञान में सबका एक ही था। सबके पृथक पृथक धर्म थे। वे एक वेद को ही मानने वाले थे और एक ही धर्म का अनुसरण करते थे। वे चारों आश्रमों के कर्मों का निष्काम भाव से आचरण करके परम गति प्राप्त करते थे। इस प्रकार जब आत्म तत्व की प्राप्ति कराने वाला धर्म विद्यमान हो तब सतयुग समझना चाहिए। यह तो सत्व, रज, तम तीनों गुणों से रहित सतयुग का वर्णन हुआ। अब त्रेता का रूप सुनो। उस समय यज्ञ में प्रवृत्ति होती है, धर्म का एक पाद नष्ट हो जाता है, भगवान लाल वर्ण के होते हैं, मनुष्यों की प्रवृत्ति सत्य में रहती है तथा उन्हें अपने संकल्प और भाव के अनुसार कर्म और दान के फल मिलते हैं। वे धर्म से डिगते नहीं है, धर्म, तप और दान आदि करने में बड़े तत्पर रहते हैं। त्रेता युग में धर्म में स्थित और क्रियावान पुरुष होते हैं। उसके पश्चात धर्म के केवल दो पाद रह जाते हैं, इसलिए उसका नाम द्वापर है। भगवान विष्णु का इस समय पीला वर्ण होता है। वेद के चार भाग होते हैं, उसमें कोई लोग तो चारों वेद पढ़ते हैं तथा कोई तीन पढ़ते हैं, कोई दो और कोई एक वेद का ही स्वाध्याय करते हैं और कोई वेद पढ़ते ही नहीं है। इस प्रकार शास्त्रों के भिन्न भिन्न हो जाने से कर्म में भी भेद हो जाता है तथा प्रजा तप और दान इन दो धर्मों में ही विशेष रूप से प्रवृत्ति रहती है। ये राजसी प्रवृत्ति है। उस समय वेदों का ज्ञान न होने से वेदों की अनेक भेद वाली बुद्धि उनमें पैदा हो जाती है और सत्व गुण का ह्रास होने से सत्य में तो किसी प्रकार की स्थिति रहती है, सत्य से च्युत हो जाते समय व्याधियां और कामनाएं भी अनेक प्रकार की हो जाती हैं। और फिर कलयुग आता है। कलयुग में धर्म का केवल एक ही पैर रहता है, तमोगुणी तमोगुण रहता है, इसलिए भगवान काले वर्ण के होते हैं। वैदिक आचार विचार सब नष्ट हो जाता है। उस समय ईति, भीति, व्याधि, तंद्रा, क्रोध आदि तरह तरह के उपद्रव होते हैं। सबकी वृद्धि होने लगती है। धर्म में परिवर्तन होने से लोगों की स्थिति में भी परिवर्तन होता है। जब लोगों की स्थिति गिर जाती है तब उसके प्रवर्तक भावों का भी क्षय हो जाता है। देखो भीमसेन, अब कलयुग आने वाला है, इसलिए तुम्हें जो मेरा पूर्व रूप देखने का कौतूहल था वो ठीक नहीं है। समझदार लोग व्यर्थ बातों के लिए आग्रह नहीं किया करते हैं। इस प्रकार तुमने मुझसे जो बात पूछी थी वो मैंने सब कह दी, अब तुम प्रसन्नता पूर्वक जा सकते हो। भीमसेन ने कहा, हे वानर राज, चाहे आप मेरा दुराग्रह माने चाहे कुछ भी माने, मैं आपके पूर्व रूप को देखे बिना यहां से किसी प्रकार नहीं जा सकता। यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो मुझे वो दर्शन कराइए। भीमसेन की इस बात को सुनकर हनुमान जी मुस्कुराए और फिर अपना वो विराट रूप दिखाया जो उन्होंने समुद्र के लांघते समय धारण किया था। अपने भाई को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने अपने शरीर को बहुत बढ़ा दिया। लंबाई चौड़ाई क्या बताए, उस समय अतुलित कीर्तिमान हनुमान जी के विशाल विग्रह से दूसरे वृक्षों के सहित वह केलों का बगीचा स्वयं ढक गया। कुरुश्रेष्ठ भीमसेन अपने भाई का इतना विशाल रूप देखे आश्चर्य भी हुआ और रोमांचित भी हुए। हनुमान जी का यह विग्रह तेज में सूर्य के समान और सोने के पहाड़ के समान जान पड़ता था। उनकी विशालता का कहां तक वर्णन करें, मानो देदीप्यमान आकाश ही आज आ गया हो। और उसे देखते देखते भीमसेन की आंखें बंद हो गई, भीमसेन उनको देख नहीं सका। विंध्याचल पर्वत के समान उस विचित्र और अत्यंत भयानक देह को देखकर भीमसेन बार बार रोमांचित हो रहे थे और हाथ जोड़कर बड़े नम्रता से कहने लगे, हे समर्थ हनुमान जी, मैंने आपके इस शरीर का महान विस्तार देख लिया, अब मैं ज्यादा देर इसको देख नहीं सकता हूं, मेरी इतनी शक्ति नहीं है। मैंने आपके शरीर का महान विस्तार देख लिया, अब आप अपने स्वरूप को समेट लीजिए। आप तो साक्षात उदित हुए सूर्य के समान है और मैनाक पर्वत के समान अपरिमित और दुराधर्श है। मैं आपकी ओर देख नहीं सकता हूं, हे वीर, मेरे मन में तो आज यही बड़ा आश्चर्य है कि मैं आपके समीप खड़ा कैसे हूं। आपके रहते हुए राम जी को रावण के लिए युद्ध करना पड़ा, उस लंका को तो उसके योद्धा और वाहनों के सहित आप अकेले ही पर्याप्त बल वाले बाहुबल से नष्ट करने में समर्थ थे। हे पवन नंदन, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपको प्राप्त न हो। रावण तो अपने परिकरों सहित अकेले आपसे ही लड़ने में समर्थ नहीं था, फिर राम जी को आपने क्यों युद्ध के अंदर आगे किया। भीमसेन के इस प्रकार भोले भाले प्रश्न पर हनुमान जी बड़े मीठे और गंभीर शब्दों में कहने लगे, हे भीमसेन भारत, तुम जैसा कहते हो वैसा ही ठीक है। वह अदम राक्षस वास्तव में मेरा सामना नहीं कर सकता था, किंतु सारे लोगों को कांटे के समान सालने वाले उस रावण को यदि मैं मार डालता तो राम जी को यह कीर्ति कैसे मिलती। इसी से मैंने उसकी उपेक्षा की और राम जी का यह संसार में बढ़ाने के लिए मैंने नहीं मारा। वीरवर श्री रघुनाथ जी ने सेना सहित उस राक्षस आदम का वध किया और सीता जी को अपनी पुरी ले आए, इससे कितना सुयश फैला है। अच्छा बताओ भीमसेन, तुमने भी जब ये राम जी की कथा सुनी तुमको भी कितनी प्रिय लगी, औरों को भी कितनी प्रिय लगेगी, कितने प्राणियों का उद्धार होगा। हे बुद्धिमान भीमसेन, अब तुम जाओ, देखो ये सामने वाला मार्ग सौगंधिक वन को जाता है, वहां तुम्हें यक्ष और राक्षसों से सुरक्षित कुबेर का बगीचा मिलेगा। तुम जल्दी से जल्दी पुष्प चयन करने की तुम जल्दी से जल्दी पुष्प चयन करके चल दो, ऐसी भावना मत रखना। तुम धीरे धीरे जाना, धीरे धीरे पुष्प चयन करना। मनुष्यों को तो विशेष रूप से देवताओं का मान करना चाहिए। तुम जितने निश्चिंत होकर और दुस्साहस को रोककर, चंचलता रोककर वहां पुष्प चयन करोगे, उतने ही देवता लोग तुम्हारी सहायता करेंगे। भैया तुम साहस मत कर बैठना, अपने धर्म का पालन करना, अपने धर्म का पालन करो, उसी के अनुसार व्यवहार करो। धर्म को जाने बिना और बड़ों की सेवा किए बिना बृहस्पति के समान ज्ञान होते हुए भी वो काम वो चीज समझ में नहीं आती है। कितनी बढ़िया बात है। किसी समय अधर्म भी धर्म हो जाता है और कभी धर्म भी अधर्म हो जाता है। अतः धर्म और अधर्म का अलग अलग ज्ञान करना चाहिए। धर्म आचार से होता है। धर्म में वेद प्रतिष्ठित है। वेदों से यज्ञों की प्रवृत्ति हुई है और यज्ञों में देवताओं की स्थिति है। देवताओं की आजीविका वेदाचार के विधान से बतलाए हुए यज्ञों पर है। मनुष्यों का आधार बृहस्पति और शुक्राचार्य की बनाई हुई नीतियों पर है। इनमें ब्राह्मण लोग वेद पाठ से, वैश्य लोग व्यापार से, क्षत्रिय दंड नीति से अपना निर्वाह करते हैं। इन तीनों वृत्तियों का ठीक ठीक प्रयोग होने से लोक यात्रा का ठीक निर्वाह होता है। द्विजातियों में ब्राह्मण का मुख्य धर्म आत्मज्ञान है। यज्ञ, अध्ययन और दान ये तीनों साधारण धर्म है। इसी प्रकार क्षत्रिय का मुख्य धर्म प्रजा पालन है। वैश्य का पशुपालन तथा तीनों वर्णों की सेवा करना ये शूद्रों का मुख्य धर्म है। उन्हें भिक्षा, होम अथवा व्रत का अधिकार नहीं है। उन्हें तो द्विजों के घरों में रहकर उनकी सेवा करनी चाहिए। हे कुंती नंदन, तुम्हारा निज धर्म तो क्षत्रियों का प्रधान प्रजा पालन है। तुम विनयी रहना, इंद्रियों का संयमन करना, अपने बल का कभी अभिमान मत करना, अपने से बड़ों का कभी तिरस्कार मत करना। कोई भी काम करो अपने से बड़ों की सलाह लेकर करो। दुर्व्यसनी मत होना। राजा के निग्रह और अनुग्रह में उचित रीति से जो प्रवृत्त होता है तब वो प्रजा सुव्यवस्थित रहती है। अतः राजा को अपने देश और अपने किले में अपने शत्रु और मित्रों की सेनाओं की स्थिति, वृद्धि और क्षय सब बातों का पता लगाते रहना चाहिए। राजाओं को साम, दान, दंड और भेद चार उपाय रखने चाहिए। गुप्तचरों के ऊपर गुप्तचर अलग से रखने चाहिए। राजाओं की राजनीति बड़ी विचित्र होती है। साम, दान, दंड और भेद और उपेक्षा ये पांच साधन समय समय पर काम में आते हैं। सारी नीतियों और दूतों का मूल गुप्त विचार है। जो भी काम करना हो खूब सलाह करके करो, परंतु उसको पहले प्रकाशित मत करो। स्त्री, मूर्ख, बालक, लोभी और नीच पुरुषों के साथ और जिनमें उन्माद के लक्षण पाए जाते हैं उनके साथ कभी भी गुप्त विचार मत करो। परामर्श सदा बुद्धिमानों के साथ करो। सामर्थ्यवान को चाहिए कि उसे वही कार्य करे जिनमें अपना, प्रजाकार सबका हित होता हो। मूर्खों को तो सभी कामों से अलग रखना चाहिए। राजकार्यों में धार्मिकों को, अर्थकारी में विद्वानों को और स्त्रियों में काम करने के लिए नपुंसक को नियुक्त करना चाहिए। कठोर कामों में क्रूर प्रकृति वाले लोगों को लगाएं। कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में अपने और शत्रु पक्ष के लोगों की सम्मति जाने बिना शत्रु के बलाबल का भी ज्ञान रखना चाहिए। बुद्धि से जिनकी अच्छी तरह परीक्षा कर ली हो उन साधु पुरुषों पर अनुग्रह करें और मर्यादाहीन अशिष्ट पुरुषों का दमन करें। हे पार्थ, मैंने तुम्हें राजधर्म का उपदेश दिया है। इसका मर्म समझना बड़ा कठिन है। तुम अपने विभाग के अनुसार विनय पूर्वक पालन करना। जिस प्रकार ब्राह्मण तप, धर्म, दम और यज्ञानुष्ठान के द्वारा उत्तम लोक को प्राप्त होता है, वैश्य दान और आतिथ्य रूप धर्मों से सदगति प्राप्त करता है, उसी प्रकार दंड का ठीक ठीक प्रयोग करने वाला काम रहित, द्वेष रहित, लोभ रहित, क्रोध रहित क्षत्रिय दुष्टों का दमन करके सत्पुरुषों के मार्ग में जाता है। वैशंपायन जी कहते हैं, हनुमान जी भीमसेन से बड़े प्रसन्न हुए। हनुमान जी ने अपना वो स्वरूप छोटा किया और अपनी भुजाओं को फैलाकर कहा, आओ भीमसेन, तुम मेरे छाती से लग जाओ। भीमसेन जाकर हनुमान जी से मिला। भीमसेन की सारी थकावट दूर हो गई। सब प्रकार की अनुकूलता ही अनुकूलता दिखाई देने लगी। भीमसेन को लगा कि मैं बड़ा बलवान हूं। और मेरे समान कोई महान नहीं है, क्योंकि आज मैं अपने बड़े भाई हनुमान जी से मिल रहा हूं। फिर हनुमान जी ने आंखों में आंसू भरकर बड़े प्रेम से गदगद कंठ से भीमसेन से कहा, भैया अब तुम जाओ, कभी कोई चर्चा चले तो मेरा स्मरण कर लेना, और मैं इस स्थान पर रहता हूं, ये बात तुम किसी से मत कहना। अब कुबेर के भवन में भेजी हुई देवांगनाओं और अप्सराओं के यहां आने का समय हो गया है। तुम्हारे मानवी शरीर का स्पर्श होने से मुझे भी संसार के हृदय को प्रफुल्लित करने वाले भगवान श्री राम का स्मरण हो गया। अब तुम्हें मेरे दर्शनों का कुछ फल मिलना चाहिए। तुम भ्रातृत्व के नाते कोई मुझसे वरदान मांगो। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं हस्तिनापुर में जाकर तुच्छ धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार डालूं। बोलो, मैं ये कर सकता हूं। तुम चाहो तो पत्थरों से उस नगर को नष्ट कर सकता हूं। तुम चाहो तो मैं अभी दुर्योधन को बांधकर तुम्हारे पास लाकर खड़ा कर सकता हूं। बोलो भीमसेन, तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं उसे पूर्ण कर सकता हूं। सुनते रहे भीमसेन, अश्रुपात होने लगा नेत्रों से, कई देर तक भीमसेन से आवाज नहीं निकली, बोल नहीं सके। इतना अनुग्रह, इतनी कृपा हनुमान जी की। फिर भीमसेन कुछ साहस करके कहने लगे, हे बानरराज, मैं कितना बड़भागी हूं, जो मेरे हृदय में बातें वो सब आपने कह डाली। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने की मैंने प्रतिज्ञा की थी, वो आप मारने के लिए बोल रहे हैं, मुझे क्या चाहिए। आपका मंगल हो, जब आपने इतना मुझे आशीर्वाद दिया है तो ये सब काम पूरे हो जाएंगे, कोई मुझे संदेह नहीं है। बस आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, यही मैं चाहता हूं। आप हमारे रक्षक हैं, इसलिए अब पांडव लोग सनात हो गए हैं। आपके ही प्रताप से हम सब शत्रुओं को जीत लेंगे। भीमसेन के ऐसा कहने पर उनसे हनुमान जी ने कहा, भाई और सुरृद, दोनों प्रकार का मेरा तुम्हारे साथ संबंध है। जिस समय तुम शक्ति और बाणों से व्याप्त शत्रु की सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय मैं अपने शब्द से तुम्हारी गर्जना को और बढ़ा दूंगा, और अर्जुन के ध्वजा पर बैठा हुआ ऐसी भीषण गर्जना करूंगा कि जिससे शत्रुओं के प्राण सूख जाएंगे और तुम बड़ी सुगमता से उनको मार डालोगे। ऐसा कहकर हनुमान जी ने कहा, देखो भीमसेन, ये सौगंधिक वन की तरफ जाने वाला मार्ग है, इसी से ही जाना। ऐसे ही इशारा किया और अंतरित हो गए। वीरवर भीमसेन हनुमान जी के अंतर्धान होने पर कई देर तक वहां खड़े रहे, हनुमान जी का स्मरण किया, उनकी बातें याद आई, उनका प्रेम भरा आलिंगन और स्नेह भरा संवाद उनके कलेजे में उतर गया। राम की कथा सुनी, वो कथा भीमसेन के चित्त में घूमती रही, और भीमसेन ने अपने आप को हनुमान जी के दर्शन के बाद कुछ बदला बदला सा अनुभव किया। सौगंधिक वन को देखने की इच्छा से जाते हुए उन्होंने रमणीय वन और उपवन देखे, बड़े अच्छे अच्छे पुष्प वृक्षों से लदे हुए सरोवर और नदियां देखी। इस प्रकार आगे चलने पर कैलाश पर्वत के समीप कुबेर के राजभवन के पास एक सरोवर के निकट पहुंचे। भीमसेन ने वहां पहुंचकर उसका निर्मल जल पिया। महात्मा कुबेर इस सरोवर में जल क्रीड़ा किया करते थे। उनके आसपास देवता, गंधर्व, अप्सराएं और ऋषि रहते थे। उस सरोवर और सौगंधिक वन को देखकर भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए। महाराज कुबेर की ओर से हजारों क्रोधवश नाम के राक्षस तरह तरह के शस्त्र और पहनावों से सुसज्जित होकर उस स्थान की रक्षा करते थे। उन्होंने महाबाहु भीमसेन के पास आकर पूछा, कृपया बताइए आप कौन हैं? आपका वेश तो मुनियों का सा है, परंतु आप हथियार लिए हुए हैं। बोलिए, यहां किस उद्देश्य से आए हैं? भीमसेन ने कहा, राक्षसों, मेरा नाम भीमसेन है। मैं धर्मराज युधिष्ठिर से छोटा हूं, पांडु पुत्र हूं, कुंती पुत्र हूं। मैं भाइयों के साथ आकर विशाला में ठहरा हुआ हूं। वहां से वायु से उड़कर एक सुंदर सौगंधिक पुष्प हमारे निवास स्थान पर आया। उसे देखकर द्रौपदी को वैसे और फूल लेने की इच्छा से मैं यहां आया हूं। राक्षसों ने कहा, हे पुरुष प्रवर, क्या तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई? मरण धर्मा मनुष्य यहां नहीं आ सकते। यह यक्षराज कुबेर का क्रीड़ा स्थल है। देवर्षि, यक्ष और देवता, वे भी यक्षराज से आज्ञा लेकर आते हैं और उनकी आज्ञा लेकर ही जलपान आदि करते हैं। आपने उनका निरादर किया है और बलपूर्वक आप कमल को ले जाना चाहते हो। ऐसा अन्याय करने पर अपने को धर्मराज का भाई कहते हो? आप महाराज की पहले आज्ञा लीजिए, फिर जल पी सकते हैं, कमल भी ले सकते हैं। नहीं तो आप इन कमलों की तरफ झांकेंगे तो पहले हमसे युद्ध करना पड़ेगा। भीमसेन बोले, राक्षसों, तुम्हें मानवीय धर्म का ज्ञान नहीं है। हम राजा लोग किसी के सामने हाथ पसार कर मांग नहीं सकते हैं, यही हमारा सनातन धर्म है। और मैं भीमसेन किसी प्रकार मांगूं, क्षात्र धर्म छोड़ूं, कभी संभव नहीं है। यह सुरम्य सरोवर पहाड़ी के झरनों से बना है। इस पर कुबेर का जैसे अधिकार है, वैसे जिसको भी यह सरोवर प्रिय लगता है सबका अधिकार है। यह तो सर्वसाधारण की वस्तु है। प्राकृतिक वस्तुओं में कोई एक अपना अधिकार कैसे जमा सकता है? भीमसेन की निर्भीक वाणी सुनी और भीमसेन ने राक्षसों की ओर कठोर आंखों से देखा और फिर वे बिना किसी हिचकिचाहट के स्नान करने के लिए उस सरोवर में उतर पड़े। तब सब राक्षसों ने उन्हें रोका और कहा, पुरुष प्रवर, हम आपको फिर सावधान करते हैं। आप यदि हमारी बात नहीं मानते हैं तो आपको हमसे युद्ध करना पड़ेगा। भीमसेन ने गदा उठा ली, आओ, तुम्हारे में हिम्मत है तो आओ। खूब राक्षसों के साथ उनका युद्ध हुआ। उन राक्षसों ने भीमसेन को चारों ओर से घेरा। भीम ने उन सब के शस्त्रों को विफल कर दिया और सरोवर के पास सैकड़ों वीरों को बिछा दिया। जिसके ऊपर एक बार गदा का प्रहार हो गया वो फिर उठने का नाम ही नहीं लिया, वहीं पूरा हो गया। क्रोधवश राक्षस रणांगण में भागे। कोई विमानों पर चढ़कर आकाश मार्ग से कैलाश की चोटियों पर चले गए और उन्होंने यक्षराज कुबेर के पास जाकर बहुत डरते डरते कहा, युद्ध में भीमसेन के बल और पराक्रम का कोई सामना नहीं कर सकता। हे महाराज, हम भीमसेन के द्वारा पराजित हो गए। चिल्लाने लगे। इधर भीमसेन सुगंधित रम्य फूलों को बीनने लगे। राक्षसों की बातें सुनकर कुबेर बड़े हंसे और बोले,
अरे राक्षसो, मुझे तो इन सब बातों का पता था। ये भीमसेन द्रौपदी के लिए जितने कमल लेना चाहे ले सकते हैं। इससे राक्षसों का क्रोध ठंडा पड़ गया। भीमसेन के पास आए और कहने लगे, हे पुरुष प्रवर, पहले ही यदि कुबेर हमको ऐसा बोल देते तो हमको आपके साथ युद्ध नहीं करना पड़ता, हम आपका सम्मान करते हैं। इधर बद्रिकाश्रम में भीमसेन के युद्ध की सूचना देने वाला बड़ा वेगवान, तीखा और धूल बरसाने वाला वायु चलने लगा। वहां बार बार बड़ी गड़गड़ाहट के साथ पृथ्वी पर उल्कापात होने लगा, जो सबके हृदय में बड़ा भय उत्पन्न कर देता था। धूल से ढक जाने के कारण सूर्य का तेज मंद पड़ गया, पृथ्वी डगमगाने लगी, दिशाएं लाल लाल होने लगी, सर्वत्र अंधेरा छा गया, आंखों से कुछ सूझता नहीं था, भयंकर उत्पात होने लगे। युधिष्ठिर ने कहा, पांचाली, भीमसेन कहाँ है? मालूम होता है वह कहीं कुछ भयंकर कर्म कर रहा है, तभी तो प्रकृति पर ही असर हो रहा है। अकस्मात ये उत्पात कैसे हुआ? द्रौपदी ने कहा, महाराज, वायु से उड़कर जो सौगंधिक कमल यहां आया था, वह मैंने प्रेम पूर्वक भीमसेन को भेंट करके कहा था, यदि आपको ऐसे बहुत से फूल मिल जाएं, तो आप उन्हें लेकर शीघ्र ही आ जाएं। वे महाबाहु मेरा प्रिय कार्य करने के लिए कमलों की खोज में निकले हैं। युधिष्ठिर ने नकुल और सहदेव से कहा, जिस ओर भीमसेन गया है, हम उसी ओर शीघ्रता के साथ चलना चाहते हैं। राक्षस लोग तो ब्राह्मणों को ले चले, और घटोत्कच, तुम द्रौपदी को ले चलो। देखो, भीमसेन ब्रह्मवादी सिद्ध पुरुषों का कोई अपराध करे, उससे पहले ही हम लोग आप लोगों के प्रभाव से पहुंच जाएं तो बड़ा अच्छा है। तब घटोत्कच ने कहा, महाराज, जो आपकी आज्ञा है, मैं सबको अपने कंधे पर बैठा के ले जा सकता हूं। पांडवों और अनेकों ब्राह्मणों को उठाकर लोमस जी के साथ प्रसन्न चित्त से वहां से चल दिए, और लक्ष्य स्थान कुबेर के सरोवर को जानते थे लोमस ऋषि, उनके साथ वे उस मनोहर सरोवर के पास आए, और वहीं पर उनको भीमसेन दिखाई दिया। भीमसेन के पास अनेक मरे हुए यक्ष दिखाई दिए। भीमसेन को देखकर धर्मराज ने बार बार उनका कहा, भैया, तुमको देखकर हम बड़े खुश हो गए, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा साहस कैसा है? देखो, देवताओं का भी कभी कभी अप्रिय हो जाता है, तुम मेरा भला चाहते हो तो ऐसा काम फिर कभी मत करना, यक्ष लोग तो हमारे सहायक हैं। भीमसेन ने कहा, जो हमसे लड़ा हम उससे लड़े, जो हमसे नहीं लड़ा उससे हम नहीं लड़े। हमें इस बात का ज्ञान नहीं रहता है, जो हमको ललकारता है उसके बाद हमसे युद्ध किए बिना नहीं रह जाता। फिर भीमसेन को अलग ले जाकर खूब समझाया, और सौगंधिक फूल थे वो फूल दिए, और फिर देवताओं के सामने उसी सरोवर में देवता भी आ गए, और उस समय में क्रीड़ा करने लगे, खूब खेलने लगे। इतने में ही उस बगीचे के रक्षक विशालकाय यक्ष राक्षस प्रकट हो गए। उन्होंने धर्मराज, नकुल, सहदेव, लोमस और ब्राह्मणों को देखा, बड़ा आदर के साथ प्रणाम किया। धर्मराज के सांत्वना देने से कब कुबेर के दूत शांत हो गए, और कुबेर को भी पांडवों के आने की सूचना मिली। फिर अर्जुन के आने की प्रतीक्षा करते हुए उन्होंने कुछ समय तक वहां गंधमादन के शिखर पर निवास किया। वहां रहते हुए एक दिन द्रौपदी भाई और ब्राह्मणों के साथ वार्तालाप करते हुए युधिष्ठिर ने कहा, जहां पहले देवता और मुनियों ने निवास किया है, ऐसे अनेकों पवित्र और कल्याणकारी तीर्थ और मन को आनंदित करने वाले वनों के हमने बहुत दर्शन किए हैं, आश्रमों की बड़ी कथाएं सुनी है, ब्राह्मणों के साथ हमने तीर्थ स्नान किया है, कंदमूल फल का हमने भक्षण करके पितरों का तर्पण किया है, महात्मा लोमस ने हमको बड़े अच्छे अच्छे दर्शन कराए हैं, कुबेर जी का ये पवित्र स्थान भी हमको दिखाया है, ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हुई, अब तुम यहां से आगे नहीं जा सकते, ये मार्ग बहुत दुर्गम है, इसलिए कुबेर के आश्रम से आगे न बढ़कर तुम जिस मार्ग से आए हो उसी से श्री नरनारायण के स्थान बद्रिकाश्रम लौट जाओ। वहां से तुम सिद्ध और चारणों से सेवित विश्वप्रवर के आश्रम को जाना, जो बड़ा ही रमणीक और सिद्ध है और चारणों से सेवित है। उसको पार करके तुम आर्ष्टी सेन के आश्रम की तरफ जाना और उसके आगे तुम्हें कुबेर का फिर मंदिर होगा। बस इधर आगे जाना अब आपके लिए सुखद नहीं होगा। इसी समय वहां दिव्य गंधमय पवित्र शीतल वायु बहने लगी, फूलों की वर्षा होने लगी। युधिष्ठिर महाराज बड़े आश्चर्य में डूब गए, आकाशवाणी को सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए और युधिष्ठिर महाराज धौम्य की आज्ञा लेकर वहां से लौटकर श्री नरनारायण के आश्रम में आ गए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।